के आलंबन से भगवान को देखना देवदर्शन है। कहीं आपने पढ़ा प्रतिमा दर्शन? देवदर्शन शब्द आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो देवदर्शन का अर्थ क्या है कि प्रतिमा के आलंबन से देव पर अपनी दृष्टि चली जाए, यानी मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन हो जाए। मूर्तिमान यानी जिनकी मूर्ति है उनका, वो देवदर्शन है। तो वो जिनवाणी मां की कृपा से सारी चीजें, एकदम अबोध बालक है संसारी प्राणी, वो मां की कृपा से कुछ भी नहीं कर सकता। मां मां की कृपा बिना कुछ भी नहीं कर सकता, मां की कृपा से ही कुछ सीखेगा। और फिर जब दोनों आंखें ठीक होती उसकी, तो फिर भटकता नहीं कभी, फिर ठोकर नहीं खाता, फिर गड्ढे में पैर नहीं रखता। बस वो दृष्टि, उसी दृष्टि से जीव का उद्धार होता है। तो अपेक्षाओं से सब अपन विचार करें तो फिर अलग अलग बातें निकलती है, पर अपेक्षाओं को भूल जाए तो उसी क्षण अपना भ्रमण हो जाता, मिथ्यात्व में चले जाते हैं। इसलिए अपेक्षाओं को समझना बहुत जरूरी, हर जगह ख्याल रखना चाहिए। एक गाथा का अर्थ करते समय पांच बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शब्दार्थ क्या है, अन्वयार्थ क्या है, मतार्थ क्या है, आगमार्थ क्या है और भावार्थ क्या है। और स्वाध्याय के समय जो इन पांच बातों का ध्यान नहीं रखता और सीधे भावार्थ पर छलांग लगाता है, भावार्थ अंतिम है, तो सीधे छलांग लगाएगा तो क्या होगा, हड्डी पसली टूटेगी और कुछ नहीं होगा, तो बस संसार में ही भटकना उसको। इसलिए पूरे व्यवस्थित क्रम से चलना है, शब्दार्थ, अन्वयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। अभी तो आजकल लोग विशेषार्थ भी बनाने लग गए हैं, चलने दो भाई, जो चल रहा है सो चल ही रहा है, क्या करोगे। या फिर कई बार और अर्थों में क्या होता है, अपना अर्थ जुड़ जाता है, तो अपना अर्थ जुड़ जाए तो जिनवाणी के अर्थ का तो अनर्थ हो जाता है, क्योंकि जिनवाणी जिनवाणी तब तक है जब तक उसमें निजवाणी का मिश्रण नहीं है। जिनवाणी में निजवाणी मिल गई तो अर्थ का अनर्थ हो गया। निजवाणी से आज तक अपन भटके हैं, एक बार जिनवाणी की बात सुन लो तो बेड़ा पार हो जाए। तो इस प्रकार भ्रमण की जो चर्चा चल रही थी उसमें कर्म बंध का अपन ने जो दृष्टांत लिया था रिकॉर्डिंग वाला, फिर उस कैसेट को प्ले करो तो फिर अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की कैसेट होगी तो काफी अच्छी आवाज आपको आएगी, और फिर वो सेट भी अच्छा हो पूरा स्टीरियो सेट तो आवाज बढ़िया आएगी। होम स्टूडियो होता है या और भी कोई ऐसा अच्छा आइटम हो तो फिर उसमें आवाज यथावत आती है, और अगर कुछ उसमें डिफेक्ट हो, कुछ परिवर्तन हो, तो फिर थोड़ी आवाज में फर्क पड़ेगा थोड़ा। लेकिन कभी पुण्य का फल पाप रूप नहीं होगा और पाप का फल पुण्य रूप नहीं होगा। शोर कभी संगीत नहीं बनेगा, संगीत कभी शोर नहीं बनेगा। शोर पाप कर्म का दृष्टांत है, संगीत पुण्य कर्म का दृष्टांत है। तो फिर आप कहीं भी लगा लो, ये अलग बात है कि जैसे हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रांत है जहां पर हॉर्न को छोड़कर बाकी सब कुछ बजता है, ऐसी गाड़ियां चलती, इतने रद्दी रोड है कि वहां पर आवाज अलग से। हम लोग एक बार विहार कर रहे थे नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ, तो फिर जैसे ही महाराष्ट्र समाप्त हुआ और एमपी आया तो सामने से दो बसें आ रही थी, तो उन दो बसों में खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही, तो फिर साथ में चल रहे थे यहाँ पर एक सोनू जी बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी एमपी आ गया देखो, क्योंकि एमपी के रोड में गाड़ियां बेहाल हो जाती है। अभी आजकल कुछ सुधार हुआ है सुनते हैं, तो फिर हॉर्न बंद हो जाता है और कभी बाकी चीजें बजने लग जाती है। तो अगर ऐसा टेप रिकॉर्डर उसमें आप कैसेट बजाओ तो उसमें संगीत के साथ में और भी चूं चाहे चूं सब दुनिया भर की आवाजें आएंगी। तो कर्मों के युग देखो, द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणः फल प्राप्ति हृदय, कर्मोदय की परिभाषा क्या दी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन चारों के निमित्त के प्रभाव से जो कर्म का फल जीव को प्राप्त होता है उसको कहते हैं उदय। कर्म के फल को प्राप्त करना कर्मोदय है। तो कर्मोदय के समय जीव फिर राग द्वेष करता है और राग द्वेष से नवीन कर्मों का बंध होता है। अब इसमें यह है कि अगर कैसेट में आप इरेज कर दो, अगर आप देखो कैसेट का दृष्टांत इतना सुगम है कि आपको समझ में आ जाएगी बात। कैसेट में दो टैब्स होते हैं, कभी आपने ध्यान दिया हो, कोई कैसेट पड़ी हो तो बता देना। देखो ब्रह्मचारी जी बता रहे हैं आपको, उस कैसेट में ये यहां इस तरफ टेप है और इस तरफ देखिएगा आप, ये ऐसे करते नहीं ऐसे, ये यहां पर एक टैब है, इधर ये ए साइड का टैब है और ये बी साइड का टैब है। अब अगर आप ए साइड के टैब को ऐसे निकाल दो पेन की नोक से या फिर किसी भी चीज से, तो फिर ए साइड में दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती और जो रिकॉर्ड हुआ है वो मिट नहीं सकता। आ गया समझ में? इसको निधत्त और निकाचनाकरण बोलते हैं। सिद्धांत की भाषा में क्या बोलेंगे इसको? कि पत्थर की लकीर, ऐसा कर्म बांध लिया कि अब कोई चारा नहीं, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिन उपसर्ग हुआ। कोई ऐसा कर्म आ गया उदय में, तीर्थंकर है उस भव में, असंख्यात जीवों का कल्याण करने वाले हैं, लेकिन तो भी कर्म का उदय ऐसा आ गया, अभी 7 दिन बाद वहां समोसरण की सभा लगने वाली है, 100 इंद्र चरणों की पूजा करने वाले हैं, लेकिन आज कोई नहीं, सौधर्म इंद्र भी यहां पर सेवा में नहीं है उपस्थित। वो तो धर्णेन्द्र पद्मावती पूर्व ऋण के कारण कृतज्ञता नाम का गुण होने के कारण भगवान के उपसर्ग निवारणार्थ वहां पर सेवा कर रहे हैं। बाकी अगर कोई ये समझे कि धर्णेन्द्र पद्मावती मेरी भी रक्षा करे, मेरा भी कुछ काम बना दे, तो आपने उनका क्या हित उपकार किया पहले ये विचार करो। कोई फोकट में किसी के लिए कुछ नहीं करता। उपकार का बदला प्रत्युपकार होता है। आप सोचो कि फ्री में हमें सब माल मिल जाए, संभव नहीं। संसार की एक ऐसी परिणति है कि आप कुछ करोगे दूसरे का, आप भला करोगे तो वो भी कभी मौका पड़ने पर आपका भला करेगा। आप अगर कुछ भी नहीं करते तो कैसे काम चलेगा? ऐसा लिखा है उपासक आध्याय में, लिखा है कि जो जिनेन्द्र भगवान की खूब अच्छी आराधना करते हैं तो देवताओं को देख करके खुशी होती है कि देखो कितनी अच्छी आराधना कर रही है, तो फिर वो उनके लिए अनायास सहयोगी बन जाते हैं। कोई भी अच्छा काम करने वाला देख व्यक्ति अगर किसी को दिख जाए तो उसको देख करके कुछ लोगों को बड़ी खुशी होती है और फिर वो उनके उस काम में सहयोग देते। जैसे उदाहरण के लिए कोई रास्ते पर बूढ़ा आदमी है, क्रॉस करना चाहता है, आपको लगता है कि मैं मदद करूं इसकी, और उसी समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ करके उसको ले जाने लगता है तो आपको मन में बड़ी खुशी होती है, और अगर उसका बैलेंस फिर भी नहीं संभलता तब उसका हाथ आप पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक मिल गया ना आपको, तो इसलिए फिर आप उसमें विशेष रूप से सहयोग देने लग जाते हैं। इसी प्रकार यहां भी होता है। तो जो टैब्स वाली बात हमने रखी थी कि निकाचित निधत्त कर्म के उदय में फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, कोई चारा नहीं, और देव शास्त्र गुरु के आलंबन से जो लोग पुण्य के बजाय पाप कमाते हैं उनका ऐसा तीव्र बंध होता है कि फिर उससे छुटकारा मिल नहीं पाता। जैसे श्रीपाल को कोढ़ हो गया था, और कोढ़ क्यों हुआ था? वैसे हमारा विचार था कि वो कथा आपको पूरी की पूरी विस्तार के साथ सुनाए, जैसे अभी अकृत पुण्य की कथा चल रही है ना, तो उसमें एक अलग ही आनंद रस आता है बिल्कुल सुनने में, पिक्चर देखने जैसा, फिल्म जैसा रहता है वो। तो उसमें जो घटना थी वो पूर्व जन्म के कर्म का उदय था, और जब किसी अवधिज्ञानी मुनिराज से श्रीपाल ने आगे चल करके प्रश्न पूछा कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिसका ऐसा फल, तब मुनिराज ने यही उत्तर दिया कि तुमने आयतनों के आलंबन से पाप कमाया था। आयतनों के आलंबन से यानी देवशास्त्र गुरु को निमित्त बना करके तुमने पाप बांधा था, इसलिए उसका फल अकाट्य था, वो तुम्हें बहुत समय तक रुलाता रहा संसार में, बहुत दुखी करता रहा तुम्हें, असहनीय वेदना हो जाती, तुम सह नहीं पाते थे, और उस समय तुम्हारी सती मैना सुंदरी तुम्हें आलंबन देती थी, ये भी तुम्हारे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसी की कृपा से तुम नरक से बचे हो बोले, वरना उस जन्म में जो तुमने पाप किया था वो मात्र नरक गति का कारण था, लेकिन इसके निमित्त से तुमने प्रायश्चित कर लिया, तो प्रायश्चित करने से नरक से तो बच गए लेकिन कोड से नहीं बचे बोले, और समुद्र तैरना पड़ा तुम्हें, धवल सेठ ने तुम्हें समुद्र में फेंकवा दिया था, उसका कारण भी उस जन्म का पाप था। तुमने जो गुरुओं के साथ दुर्व्यवहार किया था उसका यह नतीजा था, वो कर्म होते मतलब निधत्त निकाचित कर्म, पत्थर की लकीर के समान। इसलिए कभी भी यहां आने के बाद प्रमादी नहीं बनना मंदिरों में। ये बात ठीक है कि अपन रोज आते हैं, रोज आते हैं, हमेशा जाप करते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं, लेकिन एक भी बार असावधानी न हो इस बात का होश हमेशा रखना। अभिषेक करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके रिश्तेदार बन गए भगवान, आप चाहे जैसे उठा लो भगवान को। एक दिन हमने इस बात को उठाया था यहां पर कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति विनय है, श्रद्धा है, आस्था है, और स्थापना निक्षेप से जो इनको पंच कल्याणक के धारी जिनेन्द्र मान रहा है, वो कभी भी गर्दन पकड़कर नहीं उठा सकता। गर्दन पकड़कर उठाना अभिनय तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अश्रद्धा का भी प्रतीक है, क्योंकि तीन लोक के नाथ को क्या एक सामान्य मनुष्य रूपी छोटा सा प्राणी गर्दन पकड़कर उठा सकता है? स्वयं अपने हृदय से पूछो आप, हम तो जवाब नहीं देना चाहते, उठा सकता है क्या? और जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा होगी जिनेन्द्र भगवान के प्रति, क्या उसको वो खड़े खड़े देख सकता है? चुपचाप देखता रहेगा वो? क्या उसके अंदर वेदना नहीं होगी? अपने बच्चे को नहीं उठाता कोई गर्दन पकड़कर, फिर ये तो तीन लोक के नाथ है। एक हाथ से भी उठाना गलत है, दोनों हाथ से उठाकर भगवान को विराजमान किया जाता है। और अभिषेक का अर्थ हमने बतलाया था आपको याद हो, अभिषेक हमेशा अगर एक व्यक्ति करता है तो उसको दो कलश से ही करना चाहिए, क्योंकि दो से अधिक कलश वो पकड़ नहीं सकेगा, ये मजबूरी है, तो दो कलश से ही करना। अभित सेचनम अभिषेक, अभित यानि दो तरफ से, सेचनम यानि वो अभिषेक है। और अगर दो लोग हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, दोनों आजू बाजू खड़े हो गए और दो दो कलश लेकर के करते जा रहे हैं अभिषेक, बढ़िया है। या जो भी विधि है जैसी जहां पर चलती है उसके हिसाब से शास्त्रोक्त विधि से करे, बढ़िया है। तो ये बात आ जाती है, तो आयतनों के निमित्त से अपने को कभी पाप नहीं बांधना चाहिए, वो फिर निकाचित श्रेणी में चले जाएंगे, निधत्त में चले जाएंगे, तो फिर अपन बहुत बुरे फंसेंगे। जैसे गुरु का आलंबन लेकर मान लो विहार कर रहे हैं, बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, उस यात्रा में अगर लोग कुछ गलत हरकत करने लग जाएं, बहुत सारे लोग चलते, जब लोग अधिक संख्या में चलते हैं तो फिर मस्ती भी आती है कुछ लोगों को, ये प्रकृति है आदमी की, तो फिर उस मस्ती में अगर वो पाप कमा ले तो किसी को परेशान करने लग जाए, किसी की हूटिंग करने लग जाए, तो विहार चल रहा है गुरु जी का, और फिर वो जितने विहार में सहयोग देने वाले हैं वो एक बोलचाल की भाषा में आप कहो कि हमने विहार कराया था महाराज का, लेकिन विनय की भाषा में ये नहीं बोला जा सकता। विनय की भाषा में यही बोलेंगे कि महाराज जी के विहार में हमें सहयोग देने का सौभाग्य मिला था। भाषा कितनी बदल जाती है, विहार में सहयोग देने का सौभाग्य मिला था ना, यानी उसमें क्या झलक रहा है, उसमें लघुता झलक रही है, और लघुता में ही भक्ति होती है। कोई यहां बड़ा बनकर के आ जाए तो कभी क्लास फेलो की भक्ति नहीं की जा सकती। अगर भगवान से कोई कहे कि भगवान मैं भी शुद्ध बुद्ध हूं और फिर मैं भी उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं, प्रभु पर सेने लगा हूं किंचित भी, तो फिर सामने भगवान विराजमान है तो उनके प्रति क्या भक्ति होगी बताओ। जब मैं ही इतना ऊंचा हूं तो फिर जो सामने है उनकी कैसे भक्ति हो सकती है? भक्ति तभी होती है जब अपन छोटे हो और सामने भगवान या परमिष्ठ बड़े हों। भक्ति छोटे की नहीं होती और फिर साथ वाले की नहीं होती, बड़ों की होती है। तो ऐसी भावना, मतलब आयतनों के प्रति अविनय या कोई भी ऐसी असाधना के कारण बहुत तीव्र कर्म का बंध होता है। तो ये जो फिर बाद में जो रिकॉर्डिंग होती है वो टैप जैसे टूट गया। अब वो उदाहरण मैंने इसलिए दिया था कि वो दूसरे साइड का जो टैब है वो टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, तो आप अभी दोबारा रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं वहां पर। वो पुरानी जो अपने आप मिट जाएगी, भूसा जाएगी, बोलते हैं ना भूसा जाएगी, बोलते हैं आप अपने यहां की भाषा, इरेज हो जाएगी पुरानी, और फिर उसके ऊपर नई रिकॉर्डिंग हो जाएगी। वो कर सकते हैं आप। जिन कर्मों में निधत्त और निकाचना करण नहीं पड़ा, तो समझ लो कि वो टैब अभी टूटा नहीं है। तो अभी आप चाहो तो ये जो खराब रिकॉर्डिंग हुई है बीच में, उसके ऊपर नई रिकॉर्डिंग करा लो अच्छी, प्रायश्चित करके। क्या जो गलतियां हो गई है, तो वो गलतियां तो रिकॉर्ड तो हुई है, लेकिन अभी मान लो उसमें वो निधत्त निकाचना करण नहीं पड़ा, तो फिर आप प्रायश्चित आदि करके शांति विधान कर लो। कोई गलती हो जाए तो शांति विधान कर ही लेना चाहिए, और गुरु को बताकर करना चाहिए, गुरुवर ये गलती हुई है इसलिए मैं शांति विधान करना चाहता हूं, या फिर आप कहिए, जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। या फिर जो कोई जाप्यानुष्ठान कर लिया, कुछ भी प्रायश्चित तो ले लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर प्रायश्चित नहीं लिया आपने, तो संभव है फिर वो पाप बहुत बिगड़ कर सामने आ जाए। वो जब फिर उदय में आएगा, तो उदय पर कोई किसी का कोई काबू नहीं है। उदय में आने के बाद अंजना सती जैसी जंगलों में भटकी और 99 भाइयों ने दरवाजा नहीं खोला है। अब बताइए, बहन और भाई, इनका संबंध संसार में पवित्रतम संबंध है, तो भी भाई ने भी ठुकरा दिया। कर्म का फल इतना तीव्र भी हो सकता है, और जहां जाती वहां ठोकरे ठोकरे ठोकरे। उस कथा को अगर पढ़ लो तो रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए। पंडित जी बताते थे, पन्नालाल जी, कि कानपुर में पर्यूषण के दौरान वो 16वें अध्याय का 17वें अध्याय का उनने संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया था, और जब वो जो एकदम पैथेटिक जहां पर वर्णन है, जहां पर अत्यंत करुण रस का चित्रण किया है रविशेन आचार्य महाराज ने, उन श्लोकों का जब पंडित जी अनुवाद करते थे, तो एक श्लोक का अनुवाद लिखते थे तो आंखें धुंधली हो जाती थी, आंसू भर आते थे, और फिर आंसू पोंछ करके फिर अनुवाद आगे बढ़ाते थे। पंडित जी ने बताया था कि हमने उस अध्याय को बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से पूरा हिंदी में अनुवादित किया है, क्योंकि ऐसे ऐसे श्लोक थे उसमें कि पढ़ो और आंसू आते हैं आंख में, पढ़ो और आंसू आते। अब उसमें फिर पुण्य पाप का अगर विभाग करोगे तो फिर उसमें कुछ भेद पड़ सकता है, उसको और सूक्ष्मता से देख सकते हैं, कर्मकांड आदि ग्रंथों में उसका विस्तार है। तो इस प्रकार दृष्टांत आपको समझ में आ गया, दार्शांत भी लगभग समझ में आया होगा अधिकांश लोगों को, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, जिनको आया है उनके साथ आप बैठ करके चर्चा भी कर सकते। कभी कोई ऐसा विषय आता है ना, तो शाम को बैठ करके 15-20 मिनट उस विषय पर आप चर्चा कर लिया करो, तो फिर कई बातें समझ में आती, और नहीं आती समझ में तो फिर हम जब तक चौमासे में है यहां पर तो फिर पूछ भी सकते हैं, तो उसका समाधान मिल भी सकता है। और यदि हमारे पास समाधान नहीं हुआ तो फिर गुरु लोगों से और बड़े बड़े महाराजों से पूछ सकते हैं। रास्ता अभी बंद नहीं है, खुला है। तो फिर अंजना सती का दृष्टांत, ऐसे कई दृष्टांत मिलेंगे आपको, तीव्र कर्म, पत्थर की लकीर जैसे कर्म। अनुभाग के दृष्टांत हम पहले दे चुके हैं, 24 प्रकार से जो कर्मों की जो शक्तियां होती है उसका विस्तार आपने सुना है, कई लोगों ने लिखा भी है, याद भी किया है। तो भाव परिवर्तन में अभी ये एक भूमिका हो गई कि भाव परिवर्तन में जीव जो भटकता है, हमें लग रहा था कि ये अध्याय अभी पूर्ण हो जाएगा क्योंकि 2-3 गाथाएं बची थी, पर उसकी भूमिका बनाने में पूरा इतना समय लग गया, और वो भूमिका इसलिए आवश्यक थी क्योंकि इसके बाद आप वो चीजें समझ पाएंगे। बिना भूमिका के अगर हम इतनी टीका पढ़ लेते तो 10-15 लाइनें थी इसमें, अभी तक तो कब का पूरी हो जाती, वो कब की पूर्ण हो जाती। लेकिन ये सारी बातें जो समझ में आई, इससे अपने को एक अंतरंग आध्यात्मिक लाभ ये हो जाता है कि भाई अपने को अपनी सावधानी बरतना चाहिए। ये सावधानी बरतने की जो प्रेरणा प्राप्त होती है इन उपदेशों में, ये अपने लिए हितकारी होती है, और जो बरतता है सावधानी उसके लिए फिर सचमुच जीवन में लाभ हो जाता है। तो इस तरह कर्मों की विभिन्न स्थितियां होती हैं और भाव परिवर्तन में फिर उसको अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। कैसे बांटा जाता है तो फिर देखिए, भाव संसार है भाव परिवर्तनम, भाव संसार कहते हैं भाव परिवर्तन को। और अब किसी एक जीव का भाव परिवर्तन बतला रहे हैं आचार्य महाराज। संजिनी जीव है मिथ्या दृष्टि, कोई सैनी मिथ्या दृष्टि जीव है। पंचेंद्रिय पर्याप्तक, पांच इंद्रियों वाला है, पर्याप्तक है। आप लोग थक तो नहीं गए? पंचेंद्रिय पर्याप्तक प्राणी, पांच इंद्रियों वाला पर्याप्तक प्राणी है, सैनी जीव है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके दसों प्राण है, ठीक है ना। दस प्राण होते हैं, पांच इंद्रियां, मन वचन काय बल श्वासोच्छ्वास और आयु, ऐसे दस प्राण होते हैं। गिन लो जरा फिर से, पांच इंद्रियां, फिर मनोबल वचन बल काय बल, फिर श्वासोच्छ्वास का उच्चारण अभी तक कोई अच्छा करने वाला मिला नहीं है। एक बालक ने किया था बस क्लास में, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास नहीं बोलो, श्व श्वासोच्छ्वास। खैर उच्चारण आप कर लेना घर में, प्रैक्टिस होमवर्क है आपका। तो ऐसा प्राणी स्वयोग्य सर्व जगन्याम ज्ञानावरण प्रकृति अंत कोटा कोटि प्रमिताम बधनाति। अब देखो, एक सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव, वो त्रियंज या मनुष्य गति में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, देवों में भी हो सकता है। वो अपने योग्य, जो सबसे कम स्थिति है ज्ञानावरण कर्म की, अपने योग्य माने पंचेंद्रियों के योग्य, सैनी जीवों के योग्य, जो सर्व जगन्य स्थिति ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति कितनी आपको मालूम ही है। तत्वार्थ जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने आठवें अध्याय में देखा होगा, आदितस्तिसृणामंत्रायस्य च त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थिति। आदितस्तिसृणा माने शुरू के जो तीन कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण और वेदनीय, और अंतरायस्य च, और आखिरी वाला जो अंतराय कर्म है, इन चार कर्मों की परास्थिति उत्कृष्ट स्थिति, अधिक से अधिक स्थिति, स्थिति यानी आपको याद हो एक्सपायरी डेट, अधिक से अधिक स्थिति उनकी त्रिंशत कोटि कोट्यः, तीस कोड़ा कोड़ी सागर। तीस कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब हो गया डेढ़ कल्प काल, ठीक है। तीन चौबीस ही निकल जाए, तीन बार चौबीस चौबीस तीर्थंकर हो जाए तो उतनी स्थिति होती है लंबी ज्ञानावरण की। और जगन्य स्थिति कितनी होती है? अंतः कोटा कोटी सागर। अंतः कोटा कोटी माने एक कोटा कोटी सागर से अंदर। तो यहां पर उतनी स्थिति का बंध कोई सैनी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव बांधता है। अब तस्य जीवस्य, उस जीव के कषाय आद्यवसाय स्थानानि असंख्य लोकमात्राणि जगन्य स्थिति योग्यानी भवन्ति। उस जीव के जो कषाय के अध्यवसाय स्थान होते हैं, अब देखो ये विषय थोड़ा सा भारी हो सकता है आप लोगों के लिए, बाकी है नहीं, ज्यादा भारी नहीं है, समझे, हम दृष्टांतों से इतना सरल कर देंगे आपको। हम कोशिश ये करते हैं कि कठिन से कठिन चीज को सरल से सरल भाषा और दृष्टांतों में समझाने का भाव रखते हैं। तो इसका दृष्टांत ऐसा समझ लो आप, पेट्रोल पंप देखा आपने, पेट्रोल पंप में जब वो डालता है पेट्रोल, ऐसे जब दबाता है तो वो जो मीटर घूमता है वो देखा आपने कभी? तो मीटर में सबसे तेज कौन से नंबर चलते हैं, लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले, बाई तरफ वाले या दाहिनी तरफ, जमनी या डाबी, कौन सी बाजू वाले? एकदम राइट साइड वाले, जमनी बाजू वाले, एकदम तेजी से चलते हैं वो। और उससे जस्ट बाजू वाला, वहां से 10 चले जाते हैं तो फिर ये वाला एक खिसकता है, और फिर ये जब 10 हो जाते हैं तो फिर यहां का एक खिसकता है। इस प्रकार ये क्रम चलता है, और फिर लीटर्स में फिर धीरे 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 वृद्धि, आखिरी में लीटर वाला हिसाब होता है। बस इसी प्रकार ये भाव परिवर्तन है, सबसे आखिरी वाला स्थान, फिर उसके पहले वाला स्थान, उसके पहले वाला स्थान और उसके पहले वाला स्थान। ऐसे चार विभाग अपने को बनाना है तो अभी आप ये दृष्टांत याद रख लो, फिर अगली बार अपन इसके दार्ष्टांत, जो कौन से भाव है, किसको कौन सी जगह रखना है, तो उससे आप समझ जाएंगे। तो भाव परिवर्तन इतना सरल आपको समझ में आ जाएगा, भाव परिवर्तन समझना तो सरल हो जाएगा इस दृष्टांत से, लेकिन करना इतना 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 कठिन है कि एक भाव परिवर्तन में न जाने कितने भाव परिवर्तन, एक भाव परिवर्तन में न जाने कितने काल परिवर्तन, एक काल परिवर्तन में न जाने कितने क्षेत्र परिवर्तन, एक क्षेत्र परिवर्तन में न जाने कितने द्रव्य परिवर्तन हो जाते हैं। यानी जीव कितने कितने भाव धारण करता है संसार में भटकते हुए, पर वो भूल जाता है। जब भी सामने कोई प्रसंग ऐसा आ जाता है, सर्वघाती कषाय के उदय में होश गंवा बैठता है, और होश गंवा करके कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिससे फिर वही चक्कर संसार चक्र का चलने लग जाता है। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तीन गाथाओं के द्वारा संसार भ्रमण का चित्रण किया है। अभी हाथ मत जोड़ो, इतनी उतावली क्यों करते हो भाई तो उसमें ये था, बहुत शॉर्ट है, कि जो खलु संसार अथो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, जो संसार में रहने वाला जीव है उसमें नियम से कोई ना कोई परिणाम होता है। परिणाम यानी कोई चिकना या रूखापन होता है उसमें, ठीक है ना। और परिणाम आदो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि, उस परिणाम के कारण, उस चिकने और रूक्षपन के कारण, क्योंकि परमाणुओं में जो बंध होता है स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध, तो जीव और कर्मों में कैसे बंध होगा, जीव में क्या स्निग्धता या रूक्षता है, तो आचार्य कहते हैं कि है। जब जीव राग द्वेष करता है तो चिकना रूखापन आ जाता है उसके प्रदेशों में, और इसलिए फिर कर्म परमाणुओं का उसमें चिपकना संभव हो पाता है। तो वो जो कर्म बंद हुआ, परिणाम आदो कम्मम और कम्मादो, उसका क्या परिणाम निकलेगा, गति सुगति, चार गतियों में से एक गति निश्चित मिलेगी। कर्मों का परिणाम क्या है, किसी न किसी गति में पहुंचा देना जीव को, कि चलो तुमने ये कर्म बांधा था ना, हम पहुंचा देते हैं, रिक्शा का काम वही करेगा, गत्यानुपूर्वी पहुंचा देगा आपको वहां पर। फिर गति मधि गदस्य देहो, गति को जिस जीव ने प्राप्त किया है उसको शरीर निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसी कोई गति है जहां शरीर ना हो, उस गति में आज तक अपन पहुंचे नहीं है, जहां शरीर नहीं हो, तो पंचम गति है, उसकी चर्चा नहीं चल रही यहां। तो चार गतियों में से कोई एक गति में जाएगा, वहां पर उसको शरीर मिलेगा। और देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, और शरीर में इंद्रियां उत्पन्न होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि शरीर उत्पन्न हो जाए और उसमें एक भी इंद्रिय न हो, इंद्रिया होंगी। जिस प्रकार का लेकर के आया है कर्म जीव, उस प्रकार से पंचेंद्रिय होगा तो पंचेंद्रिय, पांच इंद्रियां मिलेंगी, चतुर इंद्रिय होगा तो चार मिलेंगी। फिर ते ही तो विषय ग्रहण, अब इंद्रियों से क्या होगा, किसी भी विषय का, जो भी इंद्रियों के विषय होते हैं, जैसे रस, चक्षुर इंद्रिय का विषय है रूप, रसना इंद्रिय का विषय है रस, कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है, शब्द स्वर, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है आठ प्रकार के स्पर्श, और बची कौन सी इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय का विषय क्या है, गंध। तो इनमें से कोई ना कोई विषय ग्रहण करेगा, और तत्तो रागो व दोषो वा, और विषय ग्रहण करते समय राग अथवा द्वेष हो सकता है। फिर राग द्वेष होने पर जीव में फिर वो परिणाम बनेगा, चिकना या रूखापन। आ रहा समझ में आपको, शुरुआत कहां से की थी, कोई जीव संसार में है, संसार में है तो नियम से उसमें चिकना रूखापन है, और चिकना रूखापन है तो फिर कर्मों का बंध है, कर्मों का बंध है तो फिर कोई गति है, गति में शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों से विषय ग्रहण है, विषय ग्रहण में राग द्वेष है, राग द्वेष के कारण चिकना रूखापन है। ये एवं जायद जीव सेवम भावो संसार चक्रवालम में, इस प्रकार जीव में ये चिकना रूखापन संसार चक्र में चलता रहता है। अब कहां से निकलोगे बाहर इस चक्र के, कोई जगह है निकलने की, शरीर मिल जाए, ये अपन यहां शुरू से चलते हैं, परिणाम हो जाए, राग द्वेष भाव हो गए तो कर्म का बंध रुक सकता है किसी कीमत पर, नहीं। कर्म का बंध होने पर
गतियां रुक सकती है? नहीं। बोलते जाओ आप, हम बात कर रहे हैं, आपको भाषण नहीं सुना रहे हम। फिर गति में जाने पर क्या शरीर रुक सकता है? नहीं। शरीर मिलने पर क्या इंद्रियां नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। इंद्रियां मिलने पर क्या विषयों का ग्रहण नहीं होगा? होगा। विषयों का ग्रहण करने पर राग द्वेष होंगे। अब निकलोगे कहां से? देखो पूरा चक्का है ये, किसी भी गाड़ी का चक्का ले लो, हवा भरी है पूरी, फुल टाइट। अब क्या करोगे? निकलने का एक स्थान है। बच्चे लोग निकालते हैं कार की हवा, कई बार ऐसा होता है प्रवचनों में, बहुत सारी गाड़ियां आती है दूर दूर से, और फिर जब निकलते हैं तो फिर पता चलता है कि हवा कम हो गई। कुछ ऐसे रहते हैं शरारती लोग। तो अपने को क्या करना है,